Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam rupa kada mahyam Dadati svapadantikam Vandeham shri gurun Shri utapad kamalam Shri gurun vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchan Kalpatarubhyasha Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam pavane bhyo vaishnavi bhyo namo nama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshthaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine
Hare Krishna तो स्वागत है आप सबका रविवार ये श्रीमद् भागवतम की कक्षा में तभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंध 9 से अध्याय 18 और श्लोक संख्या 33-37। तो बोर्ड पर 37 श्लोक है, तो हम उसके पहले वाले श्लोक आज पढ़ लेते हैं एक बार। 33। यदुम च तुर्वसीम चैव देहयानीव जायात् द्रेयम चानु च पूरम पूर्वम च शर्मिष्ठा वार्षिक पर्वणि। देवयानी गिव बर्थ टू यदु एंड तुर्वसु एंड शर्मिष्ठा गिव बर्थ टू द्रयु अनु एंड पुरु। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने ध्रुयु अनु तथा पुरु को जन्म दिया। गर्भ संभवम आभुर्या आसुर्या भर्तु विज्ञाय मानिनी देवयानी पितु गेहम ययो क्रोध विमूर्छिता। जब गर्विली देवयानी भारी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है, तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर चली गई। प्रियाम अनुगतः कामी वचो भी उपमंत्रयम् न प्रसादितुम शेके पाद संवान आदि भी। चूंकि राजा ययाति अत्यंत विषयी तथा अतः वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया, उसने उसे पकड़कर मीठे शब्द कहे तथा उसके पांव दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना ना पाया। शुक्रतम आह कुपिता स्त्री काम अनित पुरुष त्वाम जरा विशीत विशताम मंद विरूप वर्णी निराम। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अतः मैं शाप देता हूं कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आक्रमण हो जिससे तुम कुरूप बन जाओ। तो आज का श्लोक है श्री ययाति उवाचा अतृप्ता अस्मि अद्य कामान प्रियं दूतरीत्स्वमा प्रियं दूतरीस्मते व्यस्य आत्मा यथा कामम् व्यसाय अभिधास्यति। शीययाति उवाच अतृप्त अस्मि अद्य कामान ब्रह्म्यं दुहितरीस्मते व्यस्यात्म यथा कामम् वैसाय अभिधास्यति। शीययाति उवाच अतृप्त अस्मि अद्य कामानां प्रियं दुहितरीस्मते व्यस्यतां यथा कामम् वयसाय अभिधास्यति। शीययाति वाचा अद्रित्यस्मि अद्य कामानां प्रियं दुहितरीस्मते
ऐसा यो अभिदास।
माता जी
शीयाति वाचा अतृप्त अस्मियत कामानां ब्रह्मन् द्वितरी स्मते यत्स्यात्मज्ञता कामां वयसा यो अभिधास्यति। कामानां ब्रह्मन् व्यस्यतां यथा कामं वयसा यो अभिध्यास्यति।
शब्दार्थ शी ययाति वाचा, राजा ययाति ने कहा, अतृप्तः असंतुष्ट, अस्मि मैं हूं, अद्य आज तक, कामानां अपनी विषय वासनाओं को तृप्त करने के लिए, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, द्वितरी पुत्री के संबंध में, स्म भूतकाल में, ते तुम्हारी व्यस्तताम आदान प्रदान करो, यथा कामम जब तक तुम विषयी हो, वयसा युवावस्था जवानी से, यह अभिधास्यति जो तुम्हारी वृद्धावस्था से अपनी युवावस्था को बदलने के लिए इच्छुक हो। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की, राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तात्पर्य, जब राजा ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई, तो शुक्राचार्य ने देखा कि यह तो उनकी पुत्री के अहित में है कि ययाति वृद्धावस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री की भोग इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः शुक्राचार्य ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपने बुढ़ापे को किसी की जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत दिया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देकर ययाति का बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो ययाति देवयानी के साथ संभोग कर सकता है। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णवों से कि योग्यता तो नहीं है श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ बोलने की। एक बार मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, श्रीमती राधा रानी पहुंची कृष्ण के पास। एक्चुअली गर्मी की छुट्टियां होती थी ना, इसलिए भक्ति पुरुषोत्तम महाराज सुना रहे थे, बोले कि जब गर्मी की छुट्टियां होती तो राधा रानी चली जाती थी नंदगांव, वहां पे थोड़ा छुट्टी मनाती थी आराम से। तो बहुत अच्छे से 3-4 महीने बिताए, तो वापस आई तो कीर्तिता महारानी पूछती हैं उनसे, उनकी जो माता हैं, बोले कैसा लगा है राधे, अच्छा लगा वहां पे, है ना? बोले बहुत मजा आया वहां तो, है ना, आनंद ही आनंद था, है ना। कृष्ण और उनके जो माता पिता हैं कितने सुंदर हैं, कितने सुशील हैं, सारे ब्रजवासी कितने अच्छे हैं वहां पे, मेरे को तो बहुत मजा आया, मैं तो हर साल जाया करूंगी, है ना। बोले अच्छा, इतना अच्छा लगा? बोले कुछ गड़बड़ भी लगी? बोले हाँ, एक कमी थी वहां पे। बोले कमी क्या थी? बोले ऐसा था कि एक दिन ना कृष्ण का बर्थडे आया, जन्माष्टमी का दिन था, तो बड़े ही दयालु हो जाता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। तो कृष्ण बोले आज मैं पार्टी दूंगा, सारे ब्रजवासियों को मैं पार्टी दूंगा। तो बड़ी सारे व्यंजन बनाए गए, टेबलें लगाई गई, और बोले कृष्ण बोले मैं खुद से सबको खिलाऊंगा। तो बांट रहे थे, तो बोले ये तो कीर्तिदा महारानी बोलती है तो बड़ी अच्छी बात है कि बर्थडे वाले, तो इसमें गलत क्या है? बोले गलत ये था कि कृष्ण क्या करते थे वहां पे कि जो प्लेट लेके आता था अपनी उसी को देते थे खाना, और जिसके पास प्लेट नहीं बोले वापस बाहर जाओ ना। बेचारे 2 किलोमीटर लंबी लाइन लेके आते थे, बोले नहीं 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 निकल जाओ यहां से, अपनी अपनी प्लेट लेके आओ तब जाके आपको मिलेगा। तो बोले ये बात अच्छी नहीं लगी कृष्ण की, है ना, ऐसे कोई होता है ना? बोलते भगवान है अपने आप को, है ना, इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, ये कौन सी दया है ना कि अब पात्रता नहीं है किसी के पास तो उसको दे दो भैया प्लेट। हम भी यही करते ना, प्लेट अपने घर से थोड़ी लेके आते हैं, जो आता है उसको प्लेट देके उसको प्रसाद देते हैं। पर ये बात अच्छी लगी, तो जब ये बात कीर्तिता महारानी को पता लगी तो धीरे धीरे फैल गई वहां पे, बरसाना में फैल गई। बरसाना से नंदगांव पहुंच गई, पास ही है गांव, वहां पहुंच गई तो कृष्ण के पास पहुंच गई। तो कृष्ण को जब पता लगा कि है ना ये तो राधा रानी इतने खुश होके नहीं गई है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो मिलते हैं फिर राधा रानी से। तो उनसे पूछते हैं, बोले अभी जो हूं ना मैं ऐसे ही हूं, थोड़ा ना टेढ़ा हूं मैं, है ना बड़ा स्ट्रिक्ट हूं मैं, कि अभी ये जो कृष्ण के रूप में ऐसे ही हूं कि सबको इतनी जल्दी कृपा मैं देता नहीं जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी। आपको योग्य बनना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा, मगर बाद में जब आऊंगा गौरांग महाप्रभु के रूप में तो मैं सबको दूंगा, पात्र पात्र ना विचारे सबको हरि नाम दे दूंगा, कोई देखूंगा नहीं ना कि उसकी कोई पात्रता है या नहीं, ना बहुत पढ़ा लिखा है या नहीं है, सिर पे बाल है या नहीं है, मुंह में दांत है नहीं है, पेट में आंत है नहीं है, जो भी है ना किसी को कोई पात्रता नहीं देखूंगा, पर सबको अपना जो कृष्ण प्रेम है सबको बांटूंगा बिना किसी योग्यता के ना। तो वही है, महाप्रभु के पार्षद भी वही है यहाँ पे ना, बिना योग्यता देखे ना मौका दे रहे हैं। तो भक्तों के आशीर्वाद से अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पे हम कुछ बोलना चाहेंगे। ये जो प्रसंग है ना बड़े डिफिकल्ट वर्सेस है, मैं जब पढ़ रहा था ना ऐसे लग रहा है कोई टीवी सीरियल चल रहा है ना, आप लोग तो संत महात्मा देखते नहीं होंगे ना, मगर हमने पहले जब देखे थे तो ऐसे लग रहा है पूरा ही कोई बड़ी रोमांटिक ना बड़ी थ्रिलर कुछ मूवी चल रही है ना। तो आप लोग प्रसंग तो पता ही होगा, थोड़ा हम एक बार रिपीट कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा वीर्ड सा है ये, बड़ी कामुकता की बातें हो रही हैं, लस्टी डिजायर्स की बातें हो रही हैं, और वो भी देखिए इसका आप वो पोजीशन देखिए कहां पे है। नौवें स्कंद में, जबकि अगले स्कंद में क्या शुरू होने वाली है, भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू होने वाली है। टेंथ कैटो में इट इज प्योरीफाइड टोटली, बिल्कुल काम से कोई कुछ है नहीं वहां पे, काम रंच मात्र भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण की लीलाएं हैं। और जस्ट उससे पहले वाले स्कंद में, नौवें स्कंद में किसकी बातें हो रही हैं, पूरी डिटेल में इसी की चर्चा हो रही है ना कि मेरी काम वासना पूरी नहीं हो रही है। अब देखिए कितने खुलम खुला बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि मेरी इच्छाएं अभी तृप्त नहीं हुई है ना, आपकी पुत्री का क्या होगा ना, आप मुझे तो शाप दे दोगे, आपकी पुत्री का क्या होगा ना। तो एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे, बोले ये जो नौवां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का ना, इसको ईशानु कथा भी कहा गया है। ईशानु कथा, ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उनके जो भक्त हैं। और बताते हैं कि जो भक्तों की कथा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इवन भगवान की कथा से भी। क्यों? क्योंकि भक्त है एक साधक के रूप में आता है, और जब वो साधना भक्ति करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स आती हैं, है ना। तो आंधी तूफान तो आएंगे ही ना, आंधी तूफान से आप बच नहीं सकते। तो आंधी तूफान जब आते हैं तो बड़े सारे जो पेड़ हैं गिर जाते हैं, है ना। और कुछ पेड़ क्या होते हैं, गिरने के बाद थोड़ा टेढ़ा होते रहते हैं, मगर टेढ़े होने के बाद भी सबको छाया देते हैं, उसके बाद फल देते हैं। तो भक्त ऐसे ही हैं, ये जो यहाँ पे आप इसलिए दिखा रहे शी ये आती उवाचा ना, केवल भगवान के लिए उपयुक्त होता है श्री भगवान उवाचा, तो उनके भक्तों के लिए भी उपयुक्त हो रहा है। जबकि बोल रहा है कि मेरी काम की इच्छाएं इतनी, उसके लिए प्रयुक्त करें श्री ययाति उवाचा। तो इसलिए वो इन उन भक्तों की ऐसी जो कथाएं हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, कि कैसे वो नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने के बाद ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, तो कैसे अपना कॉन्शियसनेस को इंप्रूव कर रहे हो। तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है उनसे। और साथ साथ मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि हमारे लिए भी बड़ा स्कोप है, नहीं जब इतने ऐसे ऐसे लोग, जैसे अजामिल महाराज की कथा आती है, अजामिल तो ब्राह्मण थे मगर अंत में जाके पुत्र हुआ उस वैश्या से, सबसे छोटा पुत्र का नाम था नारायण। तो जब 5 साल के थे तब यमदूत आ गए थे लेने, और साथ साथ विष्णुदूत भी आ गए थे। तो कितनी आयु थी अजामिल की जब यमदूत आए थे उनको लेने, तो एक भक्त बता रहे थे 88 years, 88 साल। तो 88 साल उम्र थी, मतलब पुत्र प्राप्ति कब हुई होगी, संतानोत्पत्ति 5 साल पहले 83। अब सोचिए 83 years की एज में कोई संतानोत्पत्ति कर रहा है, तो कितनी उनकी लालसा होगी ना, काम इच्छा होगी। बोला कम से कम इतना तो नहीं है हमारा, इतना लेवल तो नहीं है, थोड़े छोटे ही है ना, राक्षस तो है अंदर, जानवर बैठा, मतलब छोटा छोटा जानवर बैठा है। तो हमारे लिए भी बहुत स्कोप है ये पढ़ने के बाद पता लगता है। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं, वैसे आप सब जानते हैं, जो लोग पूरे सप्ताह भर नहीं आ पाते हैं। तो प्रसंग चल रहा है ययाति महाराज का। तो शुक्राचार्य एक ब्राह्मण है, उनकी पुत्री है देवयानी, वो रहते हैं एक राज्य में, जो राज्य का जो राजा है वह है वृषपर्वा, और विश्वरो की पुत्री भी है वहां पर शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा और देवयानी एक बार बाग बगीचे में जाती हैं, भ्रमण करती हैं वहां पे अपनी सखियों के साथ, और भ्रमण करते करते एक तालाब के किनारे आ जाती हैं। तो एंजॉयमेंट के मूड में स्नान करने लग जाती है वहां पे। तो अपने सारे वस्त्र उतार कर स्नान करनी है, इतने में शिवजी आते हैं। शिवजी आते ही देखते हैं, जब सारी वहां पे जो लेडीज हैं तो देखते हैं कि शिवजी आ गए, अपने वस्त्रों को धारण कर ले जाती हैं, और हड़बड़ी में क्या करती हैं, शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री है, देवयानी जो ब्राह्मणी की पुत्री है, उसके कपड़े धारण कर लेती हैं। अब देखिए, एक स्त्री ने दूसरे कपड़े के स्त्री के कपड़े पहन लिए तो क्या होता है ना, यहाँ तो आजकल माता जी औरतों में लिपस्टिक उसके लिए झगड़े हो जाते हैं, कपड़ों के लिए झगड़े हो जाते हैं, तो वहां भी लड़ाइयां शुरू होगी। तो झगड़ने लगे तो देवयानी बोलती हैं, बोले कि कैसे हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना कि तुमने ब्राह्मणी के कपड़े पहन लिए, है ना। इसी प्रकार है जैसे अभी यज्ञ में जो आहुति है उसमें यज्ञ आहुति को डाला नहीं गया यज्ञ में, आपने पहले से उसका भक्षण कर लिया, जैसे कोई कुत्ता भक्षण कर लेता है। इस प्रकार से लिखा है श्रीमद् भागवतम में। तो उनको बड़ी कठोर शब्द बोलती हैं। तो वापसी में अब शर्मिष्ठा को जब लगता है तो अहंकार जागृत हो जाता है, तो वो भी काफी कुछ सुना देती हैं, है ना। तो बोले कि तुम क्या हो, एक ब्राह्मणी की पुत्री हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, और मेरे जो पिता है तुम्हें पालते हैं, है ना, जो हमारा खाया पिया होता है, जो बचता है तुम खाते हो उसको, तुम हमारे ऊपर निर्भर हो, और कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो इतना गुस्सा आ जाता है शर्मिष्ठा को, उसको उठा के कुएं में फेंक देती है। अब सोचिए क्या क्रोध है ना, इतना क्रोध हमारे पास तो नहीं है ना, स्कोप है ना, थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, बोल देंगे कुछ शब्द बोल देंगे, मगर ऐसा प्रहार नहीं करेंगे। तो वहां पे देवयानी गिर जाती है कुएं में। तो वहां राजा जा रहे होते हैं महाराज ययाति शिकार करने के लिए, और आवाजें सुनते हैं देवयानी की, बचाओ बचाओ। तो देखते हैं कि एकदम नग्न स्त्री है, तो सबसे पहले अपना कपड़ा उतार के उसको दे देते हैं देवयानी को। कपड़ा पहन के आती हैं ऊपर, उसको बचाते हैं, ऊपर निकालते हैं, और फिर देवयानी बोलती हैं, बोले आपने मुझे बचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मगर अब आपको मेरे पूरे जीवन भर अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रथा होती थी ना, एक बार आपने किसी स्त्री को टच कर लिया तो आपको उसको संभालना पड़ेगा। हमारी हालत सोचिए, बचपन से लेके कितने लोग हाथ मिलाए होंगे, संभाल सकेंगे उनको, है ना। तो बच के हाथ संभाल लगाइए किसी के साथ, है ना, संभालना पड़ेगा, ये वैदिक ट्रेडिशन है। और बोले फिर महाराज ययाति बोलते हैं, बोले ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है कि आप एक ब्राह्मण की पुत्री हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं, तो ऐसा विवाह ना ठीक नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है। देवयानी बताती है कि नहीं, मुझे तो शाप मिला हुआ है, जो बृहस्पति के पुत्र हैं कच्छ, उनके द्वारा मैं शापित हूं। पहले खूब होता था ना, शापा शापी खूब होता था, एक दूसरे को देखे किसी को भी दिल लगा देते, है ना, उसने शाप दिया उसने वापिस शाप दिया। शुक्र करिए कलयुग में हम ना, यार शाप कोई देगा भी तो काम नहीं करेगा, और स्पेशली क्या है कलयुग में हरिनाम है, कोई शाप देने भी लग गया तो हरिनाम का कवच आपके ऊपर, कुछ नहीं होने वाला ना, भूत प्रेत शब्द बड़े दूर भाग जाते हैं, तो कोई शाप का कोई फायदा नहीं है ना, तो सौभाग्य हमारा। तो बोले कि मैं तो शापित हूं, जब कच्छ आए थे, कच्छ किसके थे, असुर जो सुर लोग थे, देवता थे, बृहस्पति उनके जो गुरु थे उनके पुत्र थे, और यहां पर शुक्राचार्य असुरों के ब्राह्मण है। तो कितने कितने देखिए कितने ओपन माइंडेड होते थे ब्राह्मण उस समय, कि शत्रु का भी पुत्र आ रहा है उसको भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ था, दोनों का बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस हो गई, इंटीमेसी हो गए, मगर कश बोले कि मैं तो आपके जो पिता है उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप मेरी तो बहन के समान हैं, मैं कैसे आपके साथ संबंध बनाऊंगा, है ना। तो शाप दे दिया उन्होंने देवयानी ने वापस कश को। तो कश ने बोले कि कश को शाप दे दिया कि आपकी जितने भी आपने विद्या सीखी है सब नष्ट हो जाएगी। और फिर वापस उन्होंने शाप दे दिया कश ने, है ना, ऐसे कैसे, है ना, शाप देते हैं कि आपका कभी ब्राह्मण से किसी विवाह नहीं होगा। तो इसी रिकमेंडेशन को साइट करती हैं कि मुझे तो शाप मिला है, मेरा किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा, तो ब्राह्मण के बाद कौन आता है, क्षत्रिय ही आता है, तो आप मुझे स्वीकार करिए और मेरे साथ विवाह करिए। इतने में उधर खबर पहुंच जाती है शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य जो कि उनकी जो पुत्री है उनको कुएं में धकेल दिया है शर्मिष्ठा ने, तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, जाते हैं विश्वकर्मा के पास, जाने को तैयार हो जाते हैं जो शर्मिष्ठा के पिता हैं। बोले अभी जाके इनको सबक सिखाऊंगा मैं, सबक तो क्या, बोले मैं छोड़ दूंगा ये राज्य ही छोड़ दूंगा, कुछ फायदा नहीं है ना, पुरोहित बनने का कुछ फायदा नहीं है। तो विश्वकर्मा जब पता लग जाता है कि शर्मिष्ठा ने ऐसा किया है उनके शुक्राचार्य की पुत्री के साथ, तो पहले ही घबरा जाते हैं, बोले इससे पहले वो कुछ क्रोधित हो कुछ शाप दे मैं जाके उनके चरणों में गिर जाता हूं। तो इस प्रकार शुक्राचार्य आ रहे थे, विश्वकर्मा पहुंचते हैं उनके चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, बोले पुत्री है ना अबोध है जानती नहीं है क्षमा कीजिए। तो बोले क्षमा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जो मेरी पुत्री की इच्छा है वो पूर्ण करनी पड़ेगी, पूर्ण करना होगा। तो देवयानी को बुलाते हैं, देवयानी की इच्छा अपनी व्यक्त करती हैं, बोले मेरी तो एक ही इच्छा है, इसको तो मैं माफ कर दूंगी, मगर जब मेरा विवाह होगा तो इसको मेरे साथ जाना पड़ेगा मेरी मेड सर्वेंट बनकर। तो बहुत सारी दासियां होंगी, उसमें से एक दासी भी ये होगी। अब सोचिए कहां राजकन्या है वो, और राजकन्या को अपनी दासी बना लिया ब्राह्मण की पुत्री ने। द्वेष और ईर्ष्या देखिए बहुत स्कोप है हमारा, इतनी तो नहीं है ना, कि बोले प्राइम मिनिस्टर के जो बेटा है पुत्री है, खैर इनके है नहीं पुराने जो होंगे ना, उनके उनके उनको अपनी दासी बनाना चाहेंगे, दास बनाना चाहेंगे। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं पिछले श्लोकों में भी। तो सबसे पहले ये जो ययाति महाराज का जो प्रसंग आ रहा है, जिसमें उन्होंने बोलते हैं स्वीकार कर लेते हैं शर्मिष्ठा को भी, सॉरी इसके आगे भी और कथा आती है। शर्मिष्ठा वहां पे दासी के रूप में सेवा करती है देवयानी की, जब विवाह हो जाता है देवयानी का ययाति महाराज के साथ। तो देवयानी के पुत्र होते हैं, दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक होता है यदु। वो बाहर बगीचे में खेल रहे होते हैं, शर्मिष्ठा जब देखती है उनको पुत्रों को, तो उसके अंदर भी इच्छा जागृत हो जाती है ना। एक स्त्री है उसकी भी काफी बहुत इच्छा होती है कि मेरे भी संतान हो, और उस भाव में वो पहुंच जाती हैं महाराज ययाति के पास। तो बोले मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी गर्भ से संतान उत्पत्ति हो, तो मैं आपसे याचना करती हूं। तो महाराज ययाति उस याचना को स्वीकार कर लेते हैं और शर्मिष्ठा से भी उसको संतानोत्पत्ति कराते हैं। तो आपको लगे कि बड़ा ही अजीब है ना, बड़े ही कामू व्यक्ति है ये, कि एक तरफ पहले शादी हो चुकी है उससे संतानोत्पत्ति हो रही है, फिर दासी के साथ संभोग कर रहा है और उससे संतानोत्पत्ति कर रहा है। मगर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि महाराज ययाति एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का शास्त्रों के अनुसार यह धर्म है कि कोई भी अगर स्त्री उसके पास आती है उसको शरणागति लेने के लिए, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो एक तरह से प्रभुपाद सपोर्ट कर रहे हैं महाराज ययाति के इस एक्शन को, इस एक्टिविटी को। तो एक तरह से क्या हुआ, पॉलीगैमी हुआ, समझ ना, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा स्त्री के साथ संबंध। तो मैं सुन रहा था भक्तों के बारे में बता रहे थे कि बोले कि ये जो पॉलीगैमी है ये पहले जमाने में ये ट्रेडिशन हुआ करता था, दो तीन कारणों से ये उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है। जैसे पहले क्या होता था कि, और जनरली हमेशा रहता है, जो स्त्रियों की संख्या कम रहती है, ज्यादा रहती है, और पुरुषों की संख्या कम रहती है। और एक सिद्धांत यह है कि एक जो स्त्री है उसको हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, फिर आगे अपने बच्चों के संरक्षण में हमेशा रहना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर स्त्रियां बहुत ज्यादा हैं तो कुछ ना किसी ना किसी पुरुष को तो एक से ज्यादा स्त्री को संरक्षण देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो राजा लोग होते थे ना, रॉयल लोग होते थे, तो वो एक से ज्यादा स्त्रियों को स्वीकार करते थे शास्त्रों के, वैदिक रिचुअल्स के अनुसार, रिलीजियस प्रिंसिपल के अनुसार, तो गलत नहीं होता था उस समय। और स्पेशली ये जो राजा लोग होते थे, ये किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, रूलिंग में, है ना, तो उसके लिए बहुत पैशन चाहिए, रजोगुण चाहिए, है ना। कह रहे हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं इस कौन के बड़े सत्वगुण में, दिव्य गुण में ना, सब मैनेजमेंट करते हैं, मगर वहां का जो शासन काल होता है बहुत पैशन चाहिए, आक्रमण करना है। अब यहां तो ऐसा नहीं होता, बोले एक मंदिर दूसरे मंदिर में आक्रमण कर लिया, जो पैशन करना है ना, थोड़े दूसरे ब्रह्मचारी पे आक्रमण जरूर कर लेते हैं ना, मगर मंदिरों पे आक्रमण नहीं होता ना, वो इतना प्रेम संबंध है। मगर वहां होता तो आक्रमण करना है दूसरी जगह पर, दूसरे राज्य पर, तो बहुत पैशन चाहिए। तो पैशन कहां से आएगा ना, तो जब ये संभोग करते थे तो वहां से पैशन उत्पन्न होता था। और ज्यादा से ज्यादा उनको रजोगुण में रखने के लिए ये आवश्यक है ना। जैसे एक व्यक्ति है बड़ा ही निठल्ला है ना, कुछ काम नहीं करता, बड़ा ही लेजी आदमी है, तो क्या करते, बोले इसकी शादी करा दो ना, काम करने अपना शुरू हो जाएगा ना, जॉब पे जाएगा ना, मेट्रो पे चढ़ेगा बैग लेके ना, कुछ पैसा लेके आएगा, धन कमाएगा ना, पालन पोषण करना है घर का, तो पैसा तो चाहिए ना उसके लिए, तो उसके लिए पैशन चाहिए। तो इसी प्रकार ये अलाउड था उस समय, तो उनको शाप दे दिया गया ययाति महाराज को जब उन्होंने शर्मिष्ठा से संतान उत्पत्ति करी, शुक्रा वृष, तो बहुत ही क्रोधित हो गए। तो शाप दिया गया जब ययाति महाराज को कि आप अभी से बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर यहां पर प्रसंग आ रहा है, ययाति महाराज बोलते हैं अगर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा ठीक है, मगर आपकी जो पुत्री है उसको भोग विलास कैसे होगा, उसकी तृप्ति कैसी होगी, तो कम से कम उसके लिए आप मुझे ना कुछ एक्सेप्शन दे दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो फिर उनको बोला गया कि ठीक है, आपका ये डिस्काउंट है कि आप किसी से पता कर लीजिए, अगर आपके साथ कोई यौवन एक्सचेंज कर लेता है, आपका बुढ़ापा कोई ले ले और आपकी युवावस्था कोई आपको दे दे। तो बोले और कोई तो नहीं देगा, है ना, किडनी मांगने जाओ, बोले किडनी खराब है, किस कौन देगा, कोई अपना सगा संबंधी होगा वही देगा। तो बोले बुढ़ापा ले लो, यौवन दे दो, जाते हैं हम ना ये प्रपोजल लेके, तो अपने पुत्रों के पास जाते हैं, पांच पुत्र है ना, दो उनके, दो देवयानी से हुए और तीन शर्मिष्ठा से। तो पहले जाते हैं यदु, यदु जो पुत्र हैं, जो देवयानी के पुत्र हैं, उनके पास जाते हैं। तो यदु साफ साफ मना करते हैं, बोले सॉरी, नो 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 नो, ये संभव नहीं है। बोले अभी तो मैंने भोग विलास किया नहीं है, और जब तक कोई व्यक्ति भोग विलास नहीं कर लेता तब तक वो संतुष्ट, वो तब तक वो वैराग्य कैसे प्राप्त करेगा। जब भोग विलासों से तृप्त हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, या उसे शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद ही वो वैराग्य प्राप्त कर सकता है। तो अभी तो मुझे ये प्रपोजल सही नहीं लग रहा। ऐसी बाकी तीन पुत्रों के पास जाते, सब मना कर देते हैं, मगर फिर जाते हैं अपने सबसे छोटे पुत्र के पास, उनका नाम है पुरु, और पुरु इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं। आगे चलकर वो प्रसंग आएगा तो और डिटेल में उसको चर्चा होगी। तो ऐसे पुत्र को बताया गया जो अपने पिता की बात को, उसके उनके भाव को जान लेता है, वो बोलते हैं फर्स्ट क्लास का पुत्र है, वो फर्स्ट श्रेणी का। तो महाराज ययाति का ये जो प्रसंग है बड़ा ही ना वियर्ड सा लगता है, उत्पन्न ऐसे लग अपियर होता है कि कितने कामुक है वो, मगर अंततो गत्वा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो एक जो भक्त है वो इन काम वासनाओं से अपने आप को बचने का प्रयास करता है। महाराज ये शब्द पांचवें स्कंद में बताते हैं श्रीमद् भागवतम के, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयो मृतो हृदय गंथि आहु, अथो गृहक्षेत्रे सुताप्त वितई जनस्य मोहो अहम अयम ममेति. ही अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्स दैट इज द रूट कॉज ऑफ अस बीइंग हियर. हम लोग इस संसार में हैं उसका एकमात्र कारण है कि अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्स, उसके कारण हम यहां पे. और उसे क्या हो गया, हमारा एक नॉट बन गया है ना, और नॉट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैच हो गए हैं गृह क्षेत्र सुताप्त है ना, बच्चों से अटैच हो गए हैं, अपने घर से अटैच हो गए हैं, धन से अटैच हो गए हैं. अहो अयम मयमेति, और उसके कारण क्या कर रहे हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस इसी का रट इसी को बार बार बोलते रहते हैं और उसी पे एक्शन करते रहते हैं, मैं और मेरा. और इसी मैं और मेरा का भूत उतारने के लिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी है, केवल इसी का भूत उतारने के लिए, मैं और मेरा. क्योंकि उनको पता है कि जब तक इसका भूत नहीं उतरेगा तब तक कोई व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं जा सकता, बहुत ही दुर्लभ है. तो ये काम की वासनाएं भक्ति के मार्ग के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं. काम और काम दो प्रकार के काम करते हैं हम, एक तो काम करते हैं बोले ऑफिस जा रहे हैं काम कर रहे हैं, और दूसरा काम है, काम वासनाएं हैं, काम और काम उसी में लगे हैं. तो काम के कारण क्या होता है, हम लोग अंधे हो जाते हैं. श्रीमद् भागवत में जैसे वर्णन आता है दूसरे स्कंद में, पूछते हैं कि बताइए कि कौन इस संसार में अंधे लोग ज्यादा हैं या देखने वाले लोग ज्यादा हैं, बताइए अंधे लोग ज्यादा हैं या देखने वाले लोग ज्यादा हैं. अंधे क्यों, किसकी तरफ अंधे, आत्म तत्व की प्रति अंधे हैं, अपश्यन आत्म तत्वम है ना, आत्म तत्व को नहीं जान पा रहे हो तो इसी कारण अंधे हैं. अंधे क्यों हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, काम है तो काम ढक चुका है, जो ज्ञान है ढक चुका है काम के द्वारा. आवृतम ज्ञानम एतेना ना, और ये क्या है, ये जो काम है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी लोग हैं उनका डेली का शत्रु है ये, प्रतिदिन का शत्रु है. जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं कृष्ण की तरफ आगे जाना चाहते हैं तो उनका नित्य वैरी है काम. तो वो लोग क्या करते हैं, रसो वर्जन रसोप्यस से वो हायर टेस्ट का सहारा लेते हैं. हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं जितना मर्जी हम प्रयास कर ले, इतनी बलशाली हैं, कुछ भी कर लीजिए हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ही उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि जैसे कोई शत्रु है ना, दो सेनाएं लड़ रही हैं ना, तो एक सेना का जो राजा है वो अपने आप बच नहीं पाएगा, उसको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए बाकी सेना की ना, हायर फोर्स का उसको आवश्यकता है. उसी प्रकार ये जो हमारी इंद्रियां हैं इसको हम अपने आप से वश में नहीं कर पाएंगे, हमें हायर फोर्स चाहिए, हायर टेस्ट चाहिए. रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो वो हायर टेस्ट चाहिए. एक बार शिला प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ फ्लाइट में जा रहे थे, तो प्रभुपाद तो अपना हरिनाम का जप कर रहे हैं ना ट्रांसेंडेंटल मोड में. उनका शिष्य था थोड़ा अभी नया नया आया था ना, दीक्षा वगैरह तो हो गई थी मगर अब एक पाश्चात्य जगत का शिष्य है उस बॉडी में है तो अभी भी अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा दूसरे दूसरे सेक्स के प्रति. तो क्या कर रहा था वहां पर कि छुप छुप के वहां एयर होस्टेस थी उसको देख रहा था है ना, बड़ी सुंदर सी, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए ना, बाल एकदम बंधे हुए ना, तो उसको देख रहा था. और प्रभुपाद जी इसको देख रहे थे कि उसको देख रहा है, तो प्रभुपाद जी ने देख लिया, प्रभुपाद तो ना गुरु हैं, गुरु सब जानते हैं. अब इसने देख लिया कि प्रभुपाद जी ने उसको देख लिया कि वो उसको देख रहा है ना, कि उसको थोड़ा लग गया कि प्रभुपाद जी ने उसको देख लिया है कि वो उस लेडी को देख रहा है. तो एकदम ऐसे अपना सिर झुका लिया उसने, और फिर प्रभुपाद जी ने नैले पे दैला मार दिया. प्रभुपाद बोले हाउ आर शी, इज नॉट शी ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है क्या ना, कितनी सुंदर है वो. अब भाई साहब अब तो पानी पानी हो गया वो ना, कि गुरु ने मेरे ऐसे मेरे को देख लिया एक स्त्री को देखते हुए ना, शर्म के मारे इतना एम्बेरसिंग उसको फील हो रहा है.
तो फिर प्रभुपाद दोबारा बोलते हैं, बोले अच्छी नहीं, सुंदर नहीं क्या? बेचारा क्या कहे, बोले हाँ प्रभुपाद, हाँ आंखें बंद कर बोले हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, बोले अच्छा ये देखिए, जब क्रिएशन इतनी सुंदर है तो सोचिए कि क्रिएटर कितना सुंदर होगा। श्रील प्रभुपाद की ना, अगर क्रिएशन आप सोचिए, एक जो छोटी सी क्रिएशन है इस भौतिक जगत की जो भगवान ने करी, वो आपको इतनी सुंदर लग रही है, तो आप देखिए श्री श्री राधिका राधिका रमन जो उन सबके क्रिएटर हो कितने सुंदर है। तो ये था ना दिव्य चक्षु प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ऐसे ही हायर टेस्ट देते थे सबको। एक व्यक्ति है जो करेला खाता है ना, करेला खाना अच्छी बात है मगर कुछ ज्यादा ही खाता, वो करेला बड़ा पसंद है उसको, दिन रात करेला करेला, सुबह क्या करेला, शाम को करेले की सब्जी, शाम को करेला का कोफ्ता, करेला चल रहा उसका, उसको करेला छुड़वाना आपको तो क्या करेंगे, बोले बड़ा कुछ कर लिया इसके साथ, सब कुछ कर लिया, मान नहीं रहा करेला, उसको रसगुल्ला ला के दे दीजिए, राजभोग, जैसे राजभोग देने करेला अपना भी छोड़ देगा वो, हाई टेस्ट दे दीजिए उसको, छोटा टेस्ट अपने आप ही छोड़ देगा। तो इसी प्रकार ये जो हमारी वासनाएं है ना, काम क्रोध लोभ, ये जो वेग है हमारे, रूप गोस्वामी वेग का शब्द प्रयोग करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो ये वेग है, वेग मतलब कि उसको कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे आप, मगर उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसको ना, उसको हायर टेस्ट दे सकते हैं। तो फिर आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णन भी आता है, बोले कि ये जो भौतिक जगत की जो सुंदरियां हैं, यहां की जो ब्यूटी है ना, बहुत सारी सुंदरियां होती हैं, उनमें से कुछ सुंदरियों को जाके है ना मिस वर्ल्ड बना लेते हैं, उनमें से कुछ सुंदरियों को जाके मिस यूनिवर्स बना देते हैं ना, तो बड़ी सी सुंदर लगती हैं और अपने आप में बहुत गर्व होता है कि कितने सुंदर नयन नक्श है हमारे। मगर प्रभुपाद बोलते हैं, बोले भौतिक जगत की जो सुंदरी है ना, सबसे सुंदर स्त्री आप, सुंदर लेडी आप उसको लीजिए, उसको कंपेयर करिए स्वर्ग की जो वहां पे जो अप्सराएं हैं, तो ऐसे लगेगा किसी मेंढकी के समान है। प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया है, मेंढकी के समान है, कंपेरिजन करेंगे तो स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं, कोई एक अप्सरा पकड़ लीजिए, और स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं हैं उनको कंपेयर करिए वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं उनसे कंपेयर करेंगे, तो कैसे लगेगा कि वैकुंठ की जो जो हाँ लक्ष्मियां हैं उनका जो नख है बस उतनी सुंदर है स्वर्ग की अप्सराएं। और ये जो तो वैकुंठ की लक्ष्मियां क्या करती हैं, ये दिन पर्यंत 24/7 वो ऊपर करके देखती रहती हैं और कृष्ण का जो मुख है, वो मुखमंडल है, उनको उनको उसको आस्वादन करती रहती हैं। आप सोचिए कहां वो लक्ष्मियां और कहां यहां पे भौतिक जगत की हम बोलते हैं सो कॉल्ड प्लेजर्स, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो प्रभुपाद हमें वही हायर टेस्ट देने आए हैं जिससे ये जो हमारे वेग हैं बहुत ही सुलभता से कंट्रोल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने असली ब्यूटी दिखाया, असली ब्यूटी, व्हाट इज रियल ब्यूटी। श्रील प्रभुपाद एक बार फ्रांस में थे, फ्रांस यूरोप, तो बहुत सुंदर है यूरोप है ना, अच्छी अच्छी झीलें हैं वहां पर, बड़े बड़े पहाड़ हैं, मगर साथ साथ वहां की जो जो ब्यूटी है वो भी बड़ी सुंदर है ना लेडीज, और वहां पे बहुत स्पेशल बीचेस हुआ करते थे, अभी भी पता नहीं होते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं उनको न्यूड बीचेस, न्यूड बीचेस मतलब निर्वस्त्र वहां पर सब लोग रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते, चाहे वो माता हो, लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, बिना किसी वस्त्र के। तो प्रभुपाद जी ने को पता लगा कि ऐसे बीचेस है वहां पे, प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने बोला मेरे को लेके चलो वहां, सुनकर डिसिपल घबरा के बोले क्या बोल रहे प्रभुपाद, प्रभुपाद बोले नहीं मैं प्रचार के लिए जाऊंगा वहां, आई वॉन्ट टू प्रीच देयर। तो उनके शिष्य बोलते प्रभुपाद आपको डर नहीं लगता ना, कितनी माया है वहां पे, और माया ऐसे कि कोई वहां पे कोई वस्त्र नहीं है। प्रभुपाद बोलते बोले माया कैनॉट टच, इवन कैनॉट टच मी, माया मुझे छू भी नहीं सकती है, इतने कॉन्फिडेंट थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद गए वहां पे प्रचार करके आए, फिर उसी शिष्य जिसने पूछा था उसने एक दिन प्रभुपाद जी को देखा कि प्रभुपाद जी कुछ प्रार्थना कर रहे हैं डीटीस के आगे, तो समझ नहीं हो, बोले प्रभुपाद तो बोलते हैं कि माया मुझे टच नहीं कर सकती है और यहां प्रभुपाद कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, तो जाके शिष्य पूछता है प्रभुपाद जी से, बोले प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले बोले आई एम प्रेइंग, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि माया कैन नॉट टच मी, कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो माया है, जो क्या है दुर्दशा ना, बहुत ही भयंकर है, वो मुझे कभी छू ना पाए। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, तो ऐसे बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं प्रार्थनाओं से ना, जो एक कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वासनाएं हम सबके अंदर हैं, मात्रा अलग अलग हो सकती है। बद्ध जीव है, बद्ध जीव है तो समझ लीजिए जानवर अंदर बैठा है, और जानवर जानवर ही होता है ना, बोलते ना कुत्ते की फूट जितनी मर्जी आप कर लीजिए सीधी नहीं होगी, वो 20 साल भी रखेंगे उसको पाइप में तो वही टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही समझ लिए कि जानवर अंदर बैठा है, कभी भी ये ना मौका देखते ही चौका दे देगा। तो इसलिए अपने आप को हमें ऐसे एनवायरमेंट में रखना पड़ेगा ताकि ये इंद्रियां जो बहुत बलशाली हैं ये अपने कार्यान्वित ना हो, उन एक्टिविटीज पे इनको सेंस ऑब्जेक्ट ना मिल पाए। तो उसके लिए शरणागति चाहिए, शरणागति चाहिए कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के प्रति। जहां पे शरणागति होगी, और सरेंडर कैसा होना चाहिए, फोर्सफुल सरेंडर ना, किसी भक्त के प्रति ऐसा हमारा फेथफुल सरेंडर हो गया है ना, तो ये जो इच्छाएं हैं हमें फोर्स नहीं करेंगी उन कार्यों को करने के लिए। और एंड में मुझे यहां समझ आ रहा था कि देखिए महाराज ययाति इतने कामुक व्यक्ति हैं, उसके बाद भी भगवान उनको स्वीकार करते हैं। आगे चलकर ये प्रसंग आएगा कि महाराज ययाति को भी मुक्ति मिली, भगवान का धाम मिला। पूरे जीवन भर किसमें लगा रहा है, काम वासनाओं में लगा रहा, बाद में एक्सचेंज भी कर लिया अपना यौवन अपने पुत्र से, उसके बाद भी काम वासनाओं में लगे रहे। अब सोचिए कि कितने टॉलरेंट होंगे भगवान, कितने सहनशील होंगे भगवान कि ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार कर लिया है, और उनके मूवमेंट पे हम लोग हैं, तो हम सोचिए हमें कितना टॉलरेंट होना पड़ेगा प्रचार के कार्य में, क्योंकि हमें भी किसने सहन किया है। जब हम आए थे पहले दिन तो शुद्ध सत्व में नहीं थे हम लोग, हमारे अंदर भी वो सारी इच्छाएं थी, हो सकता है अभी भी हैं, तो अभी भी हम भक्त लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। तो भक्ति बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, इसमें हमें बहुत जल्दी निष्कर्षों पर नहीं आना चाहिए। कई बार होता है कि एक भक्त आता है हमारे सामने है ना, और अपना हृदय शेयर करता है, बोले कितने गिरे हो तुम ना, शक्ल मत दिखाना आज के बाद मुझे, कितने घृणित कार्यों में लगे हो तुम ना। भक्ति बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, हर व्यक्ति ने हमें स्वीकार किया है, हमें हमारे अवगुणों के साथ, हमारी काम वासनाओं के साथ, हमारे वेगों के साथ। तो वही अगर हमें मूवमेंट आगे बढ़ाना है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त शेयर कर रहे थे ना, यूथ प्रीचिंग ही हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने नए नए भक्त जुड़े थे, मगर उनका प्रीचिंग का भाव बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने कहानी सुन ली जगाई और मधाई की, कि कितने गिरे हुए थे जगाई मधाई, उनको भी कृष्ण प्रेम मिल गया, कि कृष्ण भक्ति कितनी पावरफुल है कि ऐसे गिरे गिरे लोगों को भी इतना ऊपर उठा सकती है। तो जब उनको ये उन्होंने कथा सुनी जगाई मधाई की, बोले मैं भी ऐसे प्रचार करूंगा कि जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है उसको पहले भक्त बनाऊंगा। तो चले गए ना, उनका एक पास में रूम होता था, तो वहां पे एक ड्रंकर्ड होता था, वो ना खूब सुबह से शाम तक वो पीता रहता था, स्टूडेंट था मगर अच्छा वाला। तो बोले इसको लेके चलता हूं आज प्रोग्राम में, है ना, प्रभु जी का लेक्चर है, वहां पे चल के सुनेगा तो कुछ ना इसका भी इसका प्रमोशन होगा ऊपर। तो उसके पास जाते हैं, तो बोले यार चलो तुम, बोले यार चला तो मैं जाऊंगा मगर तेरे को पता है थोड़ी आदत मेरी बेकार है ना, बार बार दिल करता है, हर आधे घंटे बाद एक उत्सुकता होती है, थोड़ा मैं भी लगा लूं एक, है ना। तो डिवोटी बोले यार इसको लेके तो जाना बड़ा जरूरी है। तो बोले यार तो चल तू अपनी बोतल साथ ले जो, क्या है ना, तो सोच रहे बोतल साल देगा, जब तेरी इच्छा होगी तू ऐसे करियो, बाहर रख दियो वहां पे, जब तेरी इच्छा होगी आ जाओ थोड़ा आधे घंटे में ब्रेक में और थोड़ा लगा के अंदर फिर आ जाओ, है ना, अपना सोमरस लेके फिर अंदर आ जाओ। तो अंदर उसको लेके जाते हैं और आगे जाके बिठा देते हैं उसको। अब वो था कि वैसे ही पूरा नशा करके आया था, है ना, और जो वहां पे प्रचारक था उसको घूर घूर के देखी जा रहा है, फोकस हो गए। वो प्रचारक जब देख रहा था उनको तो बड़ा लग रहा था यार बड़ा ही सिंसियरली सुन रहा है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। कई बार होता है ना कोई व्यक्ति बहुत अच्छे सुन रहा है तो और उत्साह बढ़ जाता है बताने वाले का, श्रोता अच्छा है ना तो वाचक बहुत अच्छे से और ना उत्साह पूर्वक बताता है। तो उसको देखी जा रहा है घूर घूर के, उसको बैकग्राउंड तो पता नहीं, तो और अच्छे से कथा सुनाई जा रही सुनाई जा रही। अब ये बीच में उसको अपने ललस लगी थोड़ा, तो पीछे जाके देखता है और जो नया व्यक्ति उसको लेके आया था बोले आप जा चला जा, पता नहीं तो भाग जाए थोड़ा, तो 5 मिनट का ब्रेक लेके आता है वापस, फिर आके बैठ जाता है, फिर अपना कथा सुनते रहता है। आने के बाद फिर जब क्लास खत्म होती है जो प्रीचर होते हैं वहां पे, वो प्रोजी उसको बुलाते बोलो इधर आओ, तो आगे जाके उसको बैठ जाता है। और जो डिवोटी उनको लेके आया था वो सोचा यार अब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, सारा पोल खुल जाएगी, तो वही पास चले जाते हैं उसके। तो उससे पूछते हैं बोले नाम क्या आपका, तो वो डिवोटी बोलते हैं रजत है इसका नाम। बोले कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बोले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बोले कहाँ पे रहते हैं, बोले कानपुर में रहते हैं। तो बोले मैं इससे पूछ रहा हूँ आपको जवाब दे रहे हो, बोले परम मित्र हूं ना इसका, अभी थोड़ा मौन व्रत धारण किया हुआ है ना, कम बोलता है। बोले बड़ा अच्छा है यार तो कैंडिडेट, है ना, कम बोलता भी कम है, बड़ा फोकस होकर सुनता है ना, बड़ा सही कैंडिडेट है इसको, है ना। उसको माला दे दी बेचारे, बोले लो माला करना शुरू करो। अब उसको समझ नहीं आया, उसे समझा तो पूरा दिया माला मन का कहाँ से पकड़ना है कहाँ से शुरू करना है, तो माला लेके आ गया। तो इतने में ये डिवोटी थोड़े जो लेके आए थे तो बिजी हो गए प्रसाद प्रसूर सब करने में, ये इतना निकल लिए, है ना, उनका प्रसाद तो वही था तो मैंने बोतल लेके निकल लिए। तो एक हाथ में माला है और एक हाथ में बोतल है, और सबको जाके बोल रहे बोले मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो डिवोटी बोले बोले एक हफ्ता लग गया मुझे सब माला छुड़वाने में, कभी गले में डालता था कभी हाथ में डालता था, तो बाद में जाके वो भक्त बना। सोचिए कितना सहनशील होना पड़ेगा उस व्यक्ति को, है ना, प्रचार के लिए ऐसे ऐसे लोगों के साथ संपर्क करना, तो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यही श्रीमद् भागवतम हमें समझा रहा है। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदराचरो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा, कि फॉल डाउन तो होता रहता है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन, है ना। एक एक जो भक्त है जो अपने भक्ति के पथ पर लगा रहा है, साधना भक्ति कर रहा है, माया इतनी प्रभावशील है कि उसको गिरा देती है, मगर उसके बाद भी अगर आप उस व्यक्ति को साधु, उसको भक्ति को साधु मान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको साधु मानिए आप। क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिंड है, सम्यक व्यवस्थित हो, बिल्कुल सही जगह पर स्थित है, वो भक्ति में डिटर्मिंड है। तो इसी प्रकार ययाति महाराज भी ऐसा नहीं था कि वो पद से भ्रष्ट हो रहे थे, हृदय में उनकी कृष्ण भक्ति थी, मगर साथ साथ अनलिमिटेड डिजायर्स भी थी। तो हमेशा हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए कृष्ण भक्ति तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक नंबर का पापी धापी क्यों ना हूं मैं, कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक बार एक डिवोटी शेयर कर रहे थे, बोले एक बहुत सीनियर डिवोटी थे, उनके पास एक डॉक्टर मिलने आता था उनसे हमेशा, और डॉक्टर को इतना बोलते थे बोले हरि नाम जप करो हरि नाम जप करो, बोले इतना बिजी हूं मैं, मेरी डायरी देख लो शेड्यूल देख लो, है ना, आप मेरे को 10 सेकंड में निकाल दोगे ना शेड्यूल से तो उस 10 सेकंड में हरि नाम ले लूंगा, कोई टाइम है नहीं, कभी मुझे सर्जरी करनी है कभी ओपीडी होनी है, घर में भी मेरे पेशेंट आते हैं ना, मैं तो इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं सोसाइटी के लिए, मेरे पास समय नहीं हरि नाम करने का, कहां से करूं। तो बहुत प्रयास किया, 2-3 साल हो गए माला नहीं करता था डॉक्टर, मगर मंदिर आता था कई बार दर्शन करके चला जाता था। तो डिवोटी ने बोले बोले ऐसे करो आप माला से डरते हो ना, माला मत करो मंत्रा करो। बोले कितना? 4 मंत्रा ना, 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लो बहुत है। तो बोले हाँ ये कर सकता हूं मैं, हरे 4 बार हरे कृष्ण मंत्र। तो 4 बार हरे कृष्ण मंत्र एवरीडे जपने लग गया ना। तो लगभग 6 महीने बाद फिर आता है तो डिवोटी पूछते हैं बोले कितना कर रहे हो? बोले 4। बोले थोड़ा सा बढ़ा दो अब, जैसे हम बोलते हैं ना कि काशी बोले डबल कर दो, बोले आप भी थोड़ा बढ़ा दो। बोले कर लो कितना? 8 मंत्र शुरू कर दो। 8 तो 8 से धीरे धीरे 16 पे ले आया उसको। 16 मंत्र हो गए, फिर एक दिन धीरे धीरे करते करते 64 मंत्र पे ले आए ना। तो डिवोटी यहाँ पे एक दिन प्रसाद पा रहे थे और वो आया भक्त, नया भक्त, तो उससे पूछा, बोले कितने पे आ गए हो? बोले 64। तो आसपास वाले डिवोटी बड़े घबरा गए, बोले प्रभु जी क्या प्रीचिंग कर रहे हैं आप ना, मैं तो यहाँ लोगों को बोलते रहते बेचारे 16 माला नहीं करते उस पर अटक जाते, आपने तो इसको डॉक्टर को सीधा 64 पे ला दिया है। बोले प्रभु 64 माला नहीं मंत्र है, 6 साल हो गए भी वहीं पे ही आया है ना। तो कितने सहनशील है भक्त है ना, कितना सहन कर रहे हैं हमें है ना। तो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति, ये मत सोचिए वन डे गेम है, एक दिन चौके छक्के लगाए हो गया। तो हमारा संबंध बहुत गुड़ होना चाहिए भक्तों के साथ, नए भक्तों के साथ भी, तो हमारे लिए भी वो सुरक्षित हम रहेंगे और जो लोग आ रहे हैं उनको भी शेल्टर मिलेगा, आश्रय मिलेगा। तो प्रेम का जहां संबंध होगा वहां पे हम टॉलरेट कर पाएंगे ना? एक मैं लाइन पढ़ा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसमें लिखा, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इज इम्परफेक्ट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, लव इज मोस्ट परफेक्ट इन इट्स